शांति। एक बार मुस्कुरा के बोले ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि और सभा में मौजूद आप सभी भाई बहनें, एक बहुत ही सुंदर विषय को लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो विषय आपको पहले ही बता दिया गया है, खुशियों का उपहार। जीवन में खुशी आए और ऐसी आए कि जाने का नाम ना ले, उसी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। आप सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदाकाल की खुशी आए? जो चाहते हैं सदा के लिए हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए, सुख शांति आ जाए, वो हाथ खड़ा करो। कभी खुशी कभी गम चाहिए या सदा खुशी चाहिए? सदा खुशी चाहिए। खुशी की चाहत लोगों को इतनी होती है कि कई तो अपने बच्चों के नाम भी खुशी रख देते हैं, कईयों ने अपने बच्चों का नाम मुस्कान रखा होता है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका नाम खुशी राम है। एक मेरे दोस्त जलंधर में हैं, उनके घर बेटा हुआ, उन्होंने उसका नाम रखा हैप्पी सिंह। खुशी हर व्यक्ति को चाहिए क्योंकि खुशी के साथ ही ये जीवन चलता है। तो आप तैयार हो जाएं आज अपने अंदर खुशियों को भरने के लिए, ऐसी खुशी कि जो आकर जाने का नाम ही ना ले। हो सकता है कभी ऐसा? खुशी के बारे में कहते हैं कि खुशी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। लोग दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा दौलत होगी उतने ज्यादा हम खुश होंगे। ऐसा होता है? जो ज्यादा दौलत वाला ज्यादा खुश, कम दौलत वाला कम खुश, ऐसा होता है क्या? खुशी को हम किसी मार्केट में खरीद सकते हैं? कहीं पैसे देके मिलती है? अगर खुशी पैसे से मिलती होती, खुशी अगर अमीर होती तो क्या होता? दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। वहां तो ज्यादा लोग खुश होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। खुश तो कोई भी हो सकता है। खुशी अमीरी या गरीबी देख के नहीं आती, खुशी किस व्यक्ति को मिलती है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। कहते हैं एक बार एक सेठ था। सेठ ने अपने नगर में बहुत सुंदर मकान बनाया। इतना बढ़िया मकान था कि एक व्यक्ति सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ जी मुझे ये मकान आपसे हर हालत में लेना है, आप चाहें तो इस मकान की दुगनी कीमत मेरे से ले लें, लेकिन मुझे ये मकान आपसे खरीदना ही है। सेठ ने कहा, बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन मैं अभी अमेरिका घूमने जा रहा हूं, 15 दिन बाद वापस आऊंगा, तब मैं आपको ये मकान बेच दूंगा। अब सेठ जी खुशी खुशी अमेरिका चले गए। अमेरिका से जब 15 दिन के बाद वापस आए, बड़ी खुशी में थे कि मैं अमेरिका घूम के आया हूं। लेकिन जैसे ही अपने शहर में अपने मकान के पास पहुंचे तो सेठ जी ने देखा कि उनके मकान को आग लग गई है। ये वही सुंदर मकान था जिसके लिए एक व्यक्ति दुगनी कीमत देने के लिए तैयार था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसके मकान की आग को बुझा रही हैं। सेठ जी देख रहे हैं लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते। सैकड़ों लोग वहां भीड़ में इकट्ठे हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं और सेठ जी भी तमाशा देखने के लिए मजबूर हैं। क्यों अब सेठ की खुशी गायब हुई? क्यों गायब हुई होगी? क्यों? क्योंकि उसका मकान उसकी आंखों के सामने जल रहा है। और दूसरा कारण उसके दुख का था कि क्यों नहीं उसने वो मकान पहले बेच दिया? अगर बेच दिया होता तो मकान किसका जलता? जिसने खरीदा होता। अब क्या हुआ, 5 मिनट हुए थे कि उस सेठ जी का एक बेटा बाहर आया दूसरे मकान से। पिताजी आप आ गए? कहते हाँ आ गए। पिताजी आप दुखी क्यों हो? कहते मकान को आग लगी है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा तो खुश होऊंगा। अरे पिताजी आपको एक खुशखबरी बताता हूँ। कहते क्या? कहते जब आप चले गए थे ना, एक आदमी पीछे से आया, उसको ये मकान पसंद आ गया और उसने मुझे 3 गुना कीमत इस मकान की दे दी और मैंने बिना आपके पूछे मकान का सौदा फाइनल कर दिया। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। अब पिताजी खुश हुए होंगे या नाराज? पिताजी की जो खुशी गायब हो गई थी वो दोबारा से उनके चेहरे पे आ गई। अब वो भी जैसे दूसरी भीड़ देख रही थी, वो भी देख रहे हैं, लेकिन अब खुशी से देख रहे हैं क्योंकि मकान किसका जल रहा है? अब जिसने मकान खरीद लिया है। अभी पिताजी को एंजॉय करते हुए 10 मिनट ही हुए थे कि दूसरा बेटा कहीं से आ गया। अरे पिताजी आप खुश हो रहे हैं और मकान जल रहा है। अरे बेटा तुझे पता नहीं, तेरे बड़े भाई ने इसको बेच दिया है। अरे पिताजी मुझे पता है कि बेच दिया है, लेकिन मैं आपको पते की बात बताता हूँ कि जो बेचा है वो पक्का सौदा नहीं किया है, केवल 10% पैसे एडवांस लिए थे, 90% उसने कहा था बाद में दूंगा 2 महीने बाद। अब मकान जल गया, पता नहीं देगा या नहीं देगा। अब बताओ सेठ जी को कैसा महसूस हुआ होगा? जो खुशी आई थी वो भाप बन के दोबारा उड़ गई। दोबारा से सेठ जी उदास हो गए। इतने में तीसरा बेटा 15 मिनट बाद आता है। अरे पिताजी एक और खुशखबरी आपको बताता हूं। कहते क्या? कहते अभी अभी मैं उससे जिसने मकान खरीदा था उसके घर से आया हूं। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये मकान मैंने अब खरीद लिया है तो ये मकान अब मेरा है, आपको मेरे वादे के मुताबिक 2 महीने में पूरे पैसे मिल जाएंगे। ये मकान अब रहे या जले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सेठ जी को क्या हुआ होगा? सेठ जी दोबारा मुस्कुराने लगे। तो देखिए आज हम सब के जीवन की यही दशा है। छोटी छोटी बातें हमारी खुशी गायब कर देती हैं और छोटी छोटी बातें ही हमें खुशी दे के चली जाती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हमें वो सीखना है कौन सी बातें हमें खुशी देती हैं और कौन सी बातें खुशी छीन के ले जाती हैं। जैसे ही सेठ जी ने कहा मेरा मकान, मेरा मकान, तो क्या हुआ? दुख। और जैसे ही ये स्मृति सेठ जी को आई कि अब ये मेरा नहीं, अब किसका है, किसी और का है, तो क्या हुआ? दोबारा से मुस्कान चेहरे पे आ गई। इसे कहते हैं अटैचमेंट, मोह। जिस चीज से आप मोह रखेंगे, जिसे आप कहेंगे मेरा 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 बच्चा, मेरी कार, मेरी दुकान, वो आपको दुख देगी। और अगर आपने सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं है, सब किसका है, किसका है सब कुछ? ऊपर वाले का है। करण करावनहार वो परमात्मा है, मैं तो केवल करणहार हूं। जैसे ही ये स्मृति आपको आएगी तो आप निश्चिंत रहेंगे। मेरा मेरा समस्या पैदा करता है, इसलिए अब क्या सोचना है? कराने वाला वो है, मैं केवल करने वाला हूं। आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखा होगा। डॉक्टर एक सर्जन है, दिन में 10 ऑपरेशन भी कर देता है और अच्छे से अच्छे करता है, लेकिन उसी डॉक्टर के आगे जब उसका बेटा आ जाए और उसका ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर के हाथ कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं उसका ऑपरेशन हो रहा? क्योंकि मोह है। जहां मोह है वहां काम सही नहीं होता। अब हमें साक्षी होके जीवन में जीना है अगर खुश रहना है। ये कहानी हमें ये सिखाती है। खुश रहने के लिए जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, कुछ जीवन के नियम बनाने पड़ते हैं। हम यहाँ आए हैं, किस तरह से जीवन की गाड़ी को चलाना है। जीवन एक यात्रा है। यात्रा में जब गाड़ी चलाई जाती है तो ड्राइविंग के कुछ रूल्स होते हैं। जीवन चलाना और ड्राइविंग करना दोनों एक जैसे। ड्राइविंग जिस भाई करते हैं, कुछ बहनें भी करती होंगी, जो अच्छा ड्राइवर होगा उसे पता है कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ शीशा साफ करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ हैंडल घुमाना है स्टेयरिंग, उसे पूरी बात का पता होता है। उसी तरह जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, जीवन की मंजिल में पहुंचने के लिए भी हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, वो हमारी बुद्धि में अगर क्लियर होगा तो खुश रह सकते हैं। आप में से किसको रुखा रुखा, सूखा सूखा, गमों में डूबा डूबा, उदास, हताश, निराश चेहरा अच्छा लगता है? लगता है किसी को? अच्छा, गुस्से वाला चेहरा किसी को अच्छा लगता है? अपना चेहरा अच्छा लगता है जब गुस्से में हो, फोटो खींच ले कोई आपका और वो आपके फेसबुक व्हाट्सएप में डाल दे आपका प्रोफाइल पिक्चर बना के? डालोगे ऐसा फोटो जिसमें आप रावण की तरह दिख रहे हो गुस्से वाला, या मुस्कुराता हुआ डालते हैं? जब भी फोटोग्राफर आपके आगे आएगा तो गुस्सा करोगे या मुस्कुराओगे? कहते एक सेकंड के फोटो के लिए जब आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन भर को एक फोटो को अच्छा बनाने के लिए, तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए सदा के लिए क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? खुशियों की सौगात परमात्मा हमारे लिए लेकर आया है। वो परमात्मा हमें सिखा रहा है जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, खुशी की खुराक कैसे खा सकते हैं, खुशी की दौलत कैसे इकट्ठी की जा सकती है। सबसे बड़ी दौलत खुशी की दौलत है। जिसके पास खुशी है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास खुशी नहीं है वो खाली का खाली। आज एक पल हमारी खुशी का लेवल ऊपर जाता है, दूसरे पल खुशी का लेवल नीचे आ जाता है। थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अगले ही पल मुरझा जाते हैं। क्या कारण है? कभी सोचा क्यों नहीं हमारे जीवन में स्थायी खुशी आती? क्यों नहीं आती होगी? क्योंकि हम मान कर बैठे हैं कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जो भी ठीक या गलत हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या मानते हैं हम? दूसरा। परिस्थितियां जिम्मेवार हैं, लोग व्यक्ति जिम्मेवार हैं, कुछ चीजें जिम्मेवार हैं जिसके कारण हम दुखी हैं। लेकिन ये गलत मान्यता है। जब तक हम ये मानते रहेंगे तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इस मान्यता के ऊपर जब तक चलते रहेंगे तो ऐसा होगा, जब तक परिस्थितियां हमारी अनुकूल होंगी हम मुस्कुराएंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी हम परेशान हो जाएंगे। जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम खुश नजर आएंगे। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी आलोचना हो गई, किसी ने आपकी लेग पुलिंग टांग खींच दी, निंदा कर दी, आपका अपमान कर दिया, तो खुशी गायब भी हो जाएगी। क्योंकि हम ये मान के बैठे हैं कि दोष किसका है? किसका दोष है? मेरी सास का। सास मुझे सुख से रहने नहीं देती, और सास कहती है सारा का सारा दोष बहू का है। जब से बहू घर में आई है घर हमारा नरक बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बाप का दोष है, माँ बाप कहते हैं बच्चों का दोष है। स्कूल में चले जाओ टीचर कहते हैं बच्चे खराब हैं, बच्चे कहते हैं टीचर ठीक नहीं है। आखिर है कौन ठीक? किसके ऊपर दोष धरे? लेकिन अध्यात्म कहता है, जीवन जीने की कला कहती है, ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन सिखाई जाती है राजयोग, वो हमें सिखाता है कि किसी का कोई दोष नहीं है, कोई हमें दुख दर्द नहीं दे सकता, हमारे दुख दर्द के रचयिता हम खुद हैं। हमें ना कोई खुशी दे सकता है ना कोई हमारी खुशी छीन सकता है, ना कोई हमारा भाग्य बना सकता है, ना कोई हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। कोई व्यक्ति आपको दुख नहीं देता, दुख देती है हमारी अपनी सोच। अगर हमारी सोच सही होगी तो हम दुख वाली बात को भी सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? है बात हार की, जीवन में मिली हार है, लेकिन वो हार ही आपके गले का हार बन सकती है अगर आपकी सोच सही होगी, अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा। आज हम बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, 24 घंटे गलत सोचते रहते हैं। गलत सोचने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, गलत सोचने का मतलब ये भी है कि जब हम सोचते हैं कि इसकी वजह से मैं दर्द में हूं, इसके कारण मैं परेशान हूं, ये अगर ठीक हो जाता तो मेरा घर ठीक हो जाता, यही है मेरे प्रॉब्लम की कारण, ये भी तो गलत सोच है। जब हम उंगली दूसरे पे उठा रहे हैं, इसका मतलब हमें लगता है मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं दुखी हूं, खुश नहीं हूं, मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, इसका मतलब उसके कारण नहीं है। इसलिए किसको बदलने की जरूरत है, मुझे या उसको? जब हम सोचते हैं कि उसके कारण, तो लगता है कि उसे बदलना चाहिए। इसलिए 24 घंटे हम क्या करते रहते हैं, दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं। हमें लगता है ये बदल जाए, ये बदल जाए। है तो अच्छी भावना वैसे दूसरे के प्रति, लेकिन कहने से कोई बदलता है? हमारे सोचने से कोई बदल सकता है? हमारे सोचने से अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल मैं खुद हूं। मैं अपने को बदल सकता हूं, दूसरे को बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता? जिसको भी आप बदलने की कोशिश करेंगे जीवन में, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपसे दूर भागेगा। और जिसको आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, जिसको आप दिल से स्वीकार करोगे, वो आपके नजदीक आएगा, उसके साथ आपके उसके रिश्ते आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। और जैसे ही आपने दूसरे को सुधारने के लिए कहा तो क्या होगा, उसे लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे चाहता नहीं है, तो वो आपसे दूर भाग जाएगा। लोगों को स्वीकार करो। जैसे भी जीवन साथी आपको मिले हैं, जैसे भी बच्चे आपके घर में आए हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें खुले हृदय से स्वीकार करो। ये सोचो कि ये जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे। सोच सकते हैं सबके लिए? जिसने आपके पैसे मार लिए हो, बिजनेस में धोखा दे दिया हो, विश्वास तोड़ा हो, आपके लिए अफवाहें फैलाई हो, आपकी टांग खींची हो, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली हो, चीटिंग की हो, क्या उसके लिए अच्छा सोच सकते हो? ये सोच सकते हो कि वो बहुत अच्छा है? सोच सकते हैं या नहीं, या उल्टे विचार आएंगे, इसी के कारण मैं आज परेशान हूं? जैसे ये विचार आया तो परेशान हो जाएंगे, और जैसे ही आप ये अच्छी सोच मन में लाएंगे कि ये जैसा भी है बहुत अच्छा है, तो आपके चेहरे पे क्या आएगी? खुशी। क्या हम हमारे कहने से वो आपसे धोखा देना बंद कर देगा? क्या हमारे कहने से वो व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ना बंद कर देगा, आपकी निंदा करना बंद कर देगा? आपके कहने से आपका कहना कौन मानेगा, वो दूसरा मानेगा या आपका मन मानेगा? आपका ऑर्डर कहाँ चल सकता है, दूसरे तक चल सकता है? कितने लोग हैं, किस किस को रोकोगे आप कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो, मेरे से गुस्से से ना बोला करो, प्यार से बोला करो, तो मानेंगे आपका कहना? आपका कहना कौन मान सकता है? केवल केवल और केवल आपका अपना मन। बाकी आपका कहना कहीं चलने वाला नहीं है। जैसे ही आप अपेक्षा रखते हैं कि सब मेरे अनुसार चले, जो मैं कहूं वैसा ही हो, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे घर वाले मेरा कहना माने, उसी घड़ी ये अपेक्षा जब आप रखने लगते हो, वो अपेक्षा ही आपके दुख का कारण है। क्योंकि जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं तो क्या मिलता है? दुख। आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। आप ऑफिस में हैं, दूसरे को ऑर्डर भी दे सकते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपकी बात माने या ना माने, ये किसकी चॉइस है, ये किसकी पसंद है? उसने आपकी बात माननी है या अपने मन की बात माननी है? जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा या जो आपको अच्छा लगेगा वो करेगा? उसको ये आजादी आपने देनी है अगर आपने सुखी रहना है। दूसरे को कभी अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करो। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी जगह सही है। हमें लगता है हम सही हैं, इसलिए इनको मेरा रास्ता अपनाना चाहिए। मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, सबको क्या पहनने चाहिए? सफेद। क्या ऐसा संभव है? सबकी पसंद अपनी अपनी है। मैं आपकी पसंद का आदर करूंगा तो आप मेरी पसंद का आदर करेंगे। मैं सोचूं कि कैसे लोग हैं, काले पीले नीले हरे कई तरह के रंगों के कपड़े पहनते हैं, मैंने सोच लिया आपके बारे में, ठीक है। अब जैसा मैं सोचूंगा वैसे आप भी सोचेंगे, देखना। और मैंने आपके लिए ऐसा सोचा तो आप मेरे लिए क्या सोचोगे? ये अजीब किस्म का आदमी है, देखो सफेद कपड़े पहन के घूमता है, जल्दी मैले हो जाएंगे, कफन पहन के घूम रहा है, ये को कपड़े हैं पहनने के? मैंने आपके लिए उल्टा सोचा तो आप भी मेरे लिए कैसा सोचने लग जाओगे? उल्टा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें सिखाती हैं कि सोच को पहले बदलना है। हम बोल पे ध्यान देते हैं, कर्मों पे ध्यान देते हैं, लेकिन सोच पे ध्यान ही नहीं देते। सोच अगर सही होगी तो जीवन रिश्ते सब सही हो जाएगा। सोच ही सही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं किसी को शायद पता नहीं चलता। कड़वा बोलेंगे दूसरे को पता चल जाएगा, गलत काम करेंगे कोई ना कोई देख लेगा, और सोच के बारे में हमें लगता है कुछ भी सोचते रहो किसको क्या पता चलता है। यही हमारा भ्रम है। जो हम सोचते हैं सबसे पहले वही दूसरे के पास पहुंचता है, जो आप बोलते हैं वो बाद में पहुंचता है, और जो आपने सोचा वो सबसे पहले दूसरे के पास पहुंचेगा। हमें लगता है जो बोला वो पहुंचेगा, लेकिन जो सोचा पीछे से वो भी पहुंचेगा। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर गया। अब जिस व्यक्ति के घर में गया वो अभी अभी ऑफिस से आया था, तो वो बाहर से कहता है आओ जी आओ बैठो, आप काफी दिनों बाद हमारे घर में आए हो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बाहर से अच्छे शब्द बोल रहा है और अंदर से सोच रहा है कहाँ से आ गई मुसीबत, अभी अभी दफ्तर से आया हूँ, घर में कोई है नहीं, अब मैं आराम करूँ या इसको चाय पिलाऊँ, इससे बात करूँ? ना टेलीफोन किया, ना कोई छुट्टी वाले दिन आता, वह आ गया मूल बना के। अंदर आप ये सोच रहे हो और बाहर से क्या बोल रहे हो? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अब जो व्यक्ति आपके घर आया है वो भी क्या करेगा? वो भी आपने मीठा बोला तो वो भी कैसा बोलेगा? मीठा बोलेगा, अरे भाई जी रास्ते से गुजर रहा था, बड़े दिन हुए आपके दर्शन किए, सोचा आपके दर्शन करते ही गुजरूं, बाहर से बोलेगा। लेकिन अब आपने उसके लिए उल्टा सोचा, अंदर से वो भी क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? आज काम था इसलिए आ गया, नहीं तो आपकी तो शक्ल ना देखूं मैं। सोच पहले पहुंचती है। जीवन को अच्छा बनाना है, सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। सोच सकते हैं अच्छा सबके लिए? सबके लिए अच्छा, कोई भी खराब है ही नहीं, हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। सही है या नहीं है? कोई लोग हॉल में आते हैं, कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, क्यों? अब जो आगे बैठे हैं उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है इसलिए वो आगे बैठे, और जो पीछे बैठे हैं उन्हें पीछे बैठना अच्छा लगता है। अब कौन सही कौन गलत बताइए। अब आगे वाले सोचें कि ये जो पीछे बैठे हैं अजीब किस्म के आदमी हैं, पीछे जाके बैठते हैं, इनको पता ही नहीं है कि आगे बैठने की कितनी इम्पोर्टेंस है। और जो पीछे वाले हैं वो सोचें कि ये आगे जाके बैठ गए एकदम आगे, ये अजीब किस्म के आदमी हैं, आगे नहीं बैठना भाई, कहीं पूछ लिया प्रश्न कौन जवाब देगा, कहीं लेक्चर बोरिंग हो गया तो पीछे से तो भाग भी सकते हैं, आगे से कैसे भागेंगे, कहीं सोना भी होगा लेक्चर में तो पीछे सो जाएंगे, आगे तो देख लेंगे, सो भी नहीं सकते। इसलिए उनको लगता है कि जो आगे बैठे हैं वो अजीब किस्म के आदमी हैं। अब कौन अजीब है, आगे वाले या पीछे, कौन सही कौन गलत, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसलिए कभी ये ना सोचो कि हम सही बाकी गलत। हर व्यक्ति अपने वही कर रहा है जैसे उसके संस्कार हैं, जैसा दृष्टिकोण उसको मिला है, जैसी सोच उसकी कई सालों से डिवेलप हुई है, अपनी जगह वो अपने संस्कारों अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही है। आप उसे स्वीकार करो वो आपको स्वीकार करेगा, आप उसे अच्छा कहो तो वो आपको क्या कहेगा अच्छा, आपने उसे कहा तुम गलत तो वो क्या कहेगा मैं नहीं गलत तुम गलत। दूसरे को गलत कहना आसान है, खुद को सही लाइन पे लाना मुश्किल है, इसलिए लोग घबराते हैं। अब प्यारे भाइयों और बहनों, अगर खुश रहना है कभी भी जीवन में किसी से अपनी तुलना ना करो। तुलना तो नहीं करते, आपके पड़ोस वाले का घर बड़ी कोठी डाल दी, बड़ी सी कार लेके आ गया, अब आप देखते हो मेरे पास तो छोटी है, तो आपको हीन भावना तो नहीं आती। तुलना करोगे तो हीन भावना आएगी, अपने से ऊपर वाले से तुलना करोगे तो सोचोगे निराश हो जाओगे, हीन भावना आ जाएगी, अपने से नीचे वाले से तुलना करोगे तो लगेगा अभिमान आ जाएगा, लापरवाह हो जाएंगे। जीवन में आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने आपको अपने रूप में सबसे सुंदर बना के भेजा है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप जैसा कोई दूसरा है कोई, आप जैसी शक्ल सूरत वाला कोई है, इवन जुड़वा भाई भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। ये पांच उंगलियां एक जैसी हैं, हर उंगली का महत्व है, अगर ये पांच उंगलियां एक जैसी हो जाए तो ग्रिप बनेगा, तो हाथ में मुट्ठी से कोई काम होएगा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि इनकी हरेक की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब अपनी अपनी जगह अपना अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। किसी को अब रोल ही रावण का मिला होगा तो रावण का रोल प्ले करेगा कि राम का करेगा? अब आप चाहते हैं कि वो रावण राम बन जाए, बन सकता है? अब उसको रोल ही रावण का मिला हुआ है रामलीला में, अगर वो अपना रोल निभाना बंद कर दे तो रामलीला ही बंद हो जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी? अब आप रावण को सुधारने चले जाओ, भाई उसका तो काम ही वो है, आपने रावण नहीं बनना है, आपने क्या बनना है राम की तरह, आपने हीरो एक्टर बनना है, विलन नहीं बनना। लेकिन दूसरा अगर कर रहा है उसकी भूमिका उसको जैसी मिली है वो वैसी ही करेगा, किसी से तुलना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी के जीवन की यात्रा का अंदाजा नहीं है, उस व्यक्ति का ना आपको भूतकाल पता है ना भविष्य पता है, आप केवल वर्तमान को देख रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है ये व्यक्ति शायद ऊपर है मैं नीचे हूं, आपको तीन काल का ज्ञान नहीं है, इसलिए किसी से तुलना नहीं करनी, सब अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पे बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है, जो भूमिका उसको मिली है, स्क्रिप्ट मिलती है ना, ड्रामा में एक स्क्रिप्ट होती है, जो रोल इसने ये करना है, वो उसके अनुसार बहुत सुंदर अपना पार्ट बजा रहा है। हमें किसी को नहीं देखना है अगर खुश रहना है। कहते हैं पांच उंगलियों में एक बार झगड़ा हो गया, पांच उंगलियों ने क्लेम किया, हर उंगली कहे मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। सबसे पहले इस उंगली ने कहा मैं बड़ी, कहते तुम क्यों बड़ी, कहते सब कहते गॉड इज वन, परमात्मा एक। किस उंगली से कहते हैं, किस उंगली से कहते हैं, मुझसे तो कहते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे, किससे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं बड़ी। अब बीच वाली उंगली कहे मैं बड़ी, कहते तुम बड़ी तुम क्यों बड़ी, कहते दिखता नहीं है मैं बड़ी हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, मैं तो देखने में भी बड़ी हूं। सुनिए कहानी। तीसरी उंगली कहे, ये बीच वाली, कहते जब कोई कारगिल की लड़ाई पे जाए, उसको विजय का तिलक लगाना हो, राखी पे, जन्माष्टमी पे, किस उंगली से लगाते हैं, मुझसे तो लगाते हैं, रिंग फिंगर मुझे कहते हैं। शादी के टाइम जो रिंग पहनाते हैं किस में पहनाते हैं, मुझ में तो पहनाते हैं, इसलिए मैं बड़ी। अब जो सबसे छोटी थी वो कहने लगी, भाई चाहे मैं देखने में छोटी हूं लेकिन हूं मैं सबसे बड़ी, क्योंकि मैं भगवान के काम आई हूं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किस पे उठाया, किस पे उठाया, मुझ पे तो उठाया, इसलिए मैं बड़ी। अब अंगूठा चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, उसने सोचा ये तो हर कोई बड़ा बन रहा है, अब मैं बड़ा बन के दिखाता हूं। कहने लगा कि जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो किससे काम चलाते हैं, तो किससे काम चलाते हैं, मुझसे तो काम चलाते हैं, इसलिए मैं बड़ा। अब पांचों आपस में लड़ी जाएं, अब कौन फैसला करे, जज के पास गए कि बताओ जी कौन बड़ा है। जज ने सबकी दलीलें सुनी और जज ने उन सबको काम दिया कि ये बूंदी है, बूंदी के लड्डू बनाने हैं, अकेले अकेले बनाओ सारे। अब अकेले अकेले उंगली क्या बनाएगी, लड्डू तो तब बनेगा जब सारी उंगलियां काम करेंगी। तो क्या सबक मिला, हर उंगली का महत्व है ना, एक उंगली कट जाए आज तो क्या होगा, क्या होगा, काम होएंगे या नहीं होएंगे, रुकेंगे ना, तब पता चलेगा कि हर उंगली का महत्व कितना है। इस संसार में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सब अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल निभा रहे हैं। मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है, मुझे जो भगवान ने रोल दिया है वो सबसे बढ़िया दिया है, मुझे उसमें खुश रहना है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। आप कहीं भगवान से शिकवे और शिकायतें तो नहीं करते, करते हैं, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, करते हैं कोई शिकवे शिकायतें, ऐसे ऐसे को दे दिया, कैसे कैसे को दे दिया, मुझको भी लिफ्ट करा दे, गाना भी बना हुआ है कि तूने सोना दे दे, चांदी दे दे, हीरे मोती दे दे, भगवान को कहते हो ऐसा। भगवान से कभी कंप्लेंज ना करो कि भगवान तूने हमें कम दिया, भगवान का थैंक्स करो, शुक्रिया करो, भगवान जो तूने दिया मेरी हैसियत से ज्यादा दिया। लेकिन हम सब की नेचर कैसी बन गई है, हम सब की नेचर बन गई है आज कि जो हमें मिला है उसको तो देखते नहीं और जो नहीं मिला है उसकी ओर नजर दौड़ाते हैं। अब आपके मुंह में कितने दांत थे गिने कभी, किसी के मुंह में 32 हैं, किसी के 28 हैं, मेरा एक निकल गया है, 27 हैं, अलग अलग हैं, कहीं तो गिनते भी नहीं, पता ही नहीं है। लेकिन एक दिन डॉक्टर अगर एक दांत निकाल दे, सारी रात जीभ किसको ढूंढेगी, जीभ कहाँ जाएगी, जो निकल गया, जो है नहीं उसको ढूंढेंगे, जो हैं उनको नहीं देखेंगे। यही हमारे जीवन की असलियत बन गई है, जो मिला है उसमें खुश नहीं होंगे, पड़ोसी को ज्यादा क्यों मिल गया उसमें परेशान होंगे, होते कि नहीं होते, खुशी भी नेगेटिव हो गई है। कैसे, दूसरे को खुश देख भी नहीं सकते, इतने कमजोर आज हम हो चुके हैं कि पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, दोस्त हमसे आगे बढ़ जाएं, हमें ईर्ष्या होने लगती है, ये आगे कैसे निकल गया। होती है कि नहीं होती? आपके पड़ोसी के पास बढ़िया सी लंबी सी कार आ जाए और आप शाम के टाइम डिनर कर रहे हैं, जैसे सूचना मिलेगी आप यही चर्चा करना शुरू कर दोगे कि ये लंबी वाली कार कहां से ले आया, सारा खाने का मजा भी किरकिरा हो जाएगा, यही सोचते रहोगे कि इसके पास कार कहां से आ गई। अब मान लो एक हफ्ते के बाद उसके घर में पुलिस की, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, फिर क्या होएंगे? फिर खुश होएंगे, अब पता चला कि कार कहां से आई थी। आप दूसरे को देख के खुश होने चाहिए। अगर जीवन में कामयाब होना है, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसकी सफलता को देख के अगर आपके अंदर जलन पैदा हो रही है, दैट मीन्स वो सफलता आपके पास कभी नहीं आने वाली। कामयाबी की देवी उसके पास आएगी जो दूसरों को कामयाब होते देख खुश होगा। जिसके अंदर जलन पैदा होगी, ईर्ष्या होगी, उसे कभी भी कामयाबी उसके पास वहां नहीं आएगी। जो भगवान ने आपको दिया है बहुत अच्छा दिया है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो सही, भगवान ने कितना कुछ आपको दिया है, कितना कुछ आपको दिया है। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, नैन नम हो जाएंगे और चेहरे पे खुशी आ जाएगी जब याद करोगे कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर कितनी मेहरबानियां की हैं, कितना उसने आपको खुले दिल से दिया है, सब कुछ दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे देश में आप पैदा हुए, इतने अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, सब आपके आसपास अच्छे लोग हैं। ये सोच आप रखोगे तो जो अच्छे होंगे भी नहीं वो भी अच्छे बन जाएंगे। आपने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने आपको नहीं दिया तो इसका क्या मतलब है? आपने कुछ चाहा और आपको वो नहीं मिला, उसका क्या मतलब है? भगवान वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान आपको वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है। एक बच्चे को तो मिट्टी भी अच्छी लगती है, लेकिन माँ बाप को पता है कि इसे मिट्टी देनी है या नहीं देनी है, इसे क्या देना है, कब देना है, वो उसे पता है। वो सही समय पर आपको हर चीज देगा। धीरज रखो। और आपका अगर परमात्मा से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या है? क्या निशानी है प्यार की? कि प्यार वाला जो भी दे उसे स्वीकार करेंगे या फेंक देंगे? प्यार की निशानी है वो कुछ भी दे। सच्चा प्यार कब होगा परमात्मा से? कि जब वो आपकी इच्छाएं पूरी करे तो परमात्मा, अगर इच्छा पूरी नहीं की तो आप लोग भगवान बदल लेते, फिर तो स्वार्थ वाला प्यार हो गया ना। आज हम भगवान से डील करते हैं, इंसेंटिव देते हैं भगवान को, भगवान मेरा काम कर देना, इतना चढ़ाऊंगा, इतने व्रत रखूंगा, तुम्हारे मंदिर तक नंगे पाँव आऊंगा, ऐसे ऐसे भगवान से बातें करते। तो ये बिजनेस हुआ या प्यार हुआ? भगवान के साथ व्यापार करना चाहिए या प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए ना। और प्यार की निशानी क्या है? प्यार का मतलब है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्यार की निशानी है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बहुत सुंदर गीत आपके सामने अभी बजेगा जो कहेगा कि ऊपर वाला जो दे उसे खुले हृदय से स्वीकार करो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वाले का दिल से शुक्रिया करो, भगवान आपने हमें इतना अच्छा जन्म दिया, इतना सब कुछ अच्छा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। उसका थैंक्स करेंगे तो और ज्यादा देगा फिर, और उसको कहोगे तूने कुछ नहीं दिया तो कहेगा फिर मैं देता ही नहीं। फर्क है ना दोनों में। तो अब अगली बात पे बढ़ते हैं, जीवन में गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुस्सा किसको पसंद है? गुस्सा करने से किस किस को खुशी मिलती है? किसी को नहीं मिलती। किसी को आनंद आता हो गुस्सा करके, किसी को कुछ मिलता हो गुस्सा करके, तो फिर गुस्सा करते क्यों? जब कुछ मिलता ही नहीं है गुस्सा करके तो फिर जलने का फायदा क्या है? लेकिन लोगों को ये भ्रम है, कई लोगों को, जिन्हें लगता है कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लातों के भूल बातों से नहीं मानते, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसको दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, ये समझता क्या है, गुस्सा आ जाता है। हमें लगता है दूसरे से काम करवाना है, गुस्सा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? गुस्से से काम होते हैं या बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। अच्छा, किसी दूसरे ने आपसे काम करवाना हो तो आपको कौन सा मेथड पसंद है, प्यार वाला या डांट वाला? अच्छा, आप प्यार से काम करेंगे और दूसरा डांट से, ऐसा है? तो जो हमें पसंद है दूसरे को भी तो वही अच्छा लगता है ना। दूसरा व्यक्ति काम अगर नहीं कर रहा आपके प्यार से कहने से, इसका मतलब उस व्यक्ति की कमी नहीं है। कमी किसकी है? हमारे प्यार में कमी है। अगर हम में प्यार होगा, प्यार से तो लोग सर्कस में जाना, बड़े बड़े शेरों को रिंग में घुमाते हैं, बड़े बड़े खतरनाक जानवर सर्कस में सारा कहना मानते हैं, प्यार में तो बड़ी ताकत है। कमी दूसरे में नहीं, हमारे प्यार में कमी है। ये दुनिया प्यार से चलती है, गुस्से से नफरत से नहीं चलती। गुस्से वाला व्यक्ति खुद भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है, और जिसने गुस्सा जीत लिया ना वो अथक बन जाता है, कभी थकता नहीं। जिसने गुस्सा किया वो हमेशा थका थका, गुस्सा करने के बाद थका वो फील करते हैं या बड़ा रिफ्रेश फील करते हैं? थका थका ना, फिर कोई काम नहीं होता, सारी एनर्जी निकल जाती है आदमी की। इसलिए गुस्से को छोड़ने में ही समझदारी है। गुस्से की जगह क्या भरेंगे? प्यार। जितना आपका प्यार से आप भरपूर होंगे उतना जल्दी आप दूसरे के गुस्से को भी बदल सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपसे गुस्से से बात करे तो आप गुस्से से बात करेंगे या प्यार से बात करेंगे? बताओ, कौन कौन प्यार से बात कर सकता है? सभी बात प्यार से कर सकते हैं। वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाओ फिर। छोटा बच्चा भी ताली बजा रहा है खुशी में। हमें प्यार से बात करना आता है, सबको आता है? सबको प्यार से बात करना आता है या किसी किसी को? अगर सबको आता है उसकी निशानी है कि वो सब जगह प्यार से बात करेगा और हर बार प्यार से बात करेगा, चाहे उससे कोई गुस्से से बोले चाहे प्यार से बोले। अच्छा, जब आप प्यार से बात करते हैं तो सबसे अच्छा किसे फील होता है सबसे पहले, खुद को होता है या दूसरे को? तो फिर प्यार से बात करना चाहिए ना। और जब हम गुस्से से बात करते हैं तो खराब किसे फील होता है, दर्द सबसे पहले किसे होता है जब वो गुस्सा करता है, कोई व्यक्ति दूसरा या हम? जो गुस्सा करेगा सबसे ज्यादा दर्द पहले उसी को होगा। आपने मान लो किसी को 100 डिग्री तक गर्म करना है तो खुद कितना डिग्री गर्म होना पड़ेगा? 120, तभी तो दूसरा 100 डिग्री तक पहुंचेगा। तो पहले कौन जला? पहले कौन जला? हम। इसलिए गुस्से को छोड़ने का तरीका है प्यार की बहती गंगा बनो, अपने आप को प्यार से भरपूर करो। प्यार जितना आपके पास होगा तो आप दूसरे को बदल सकते हैं। मान लो दूसरा व्यक्ति ने गुस्से से बात की क्योंकि उसका संस्कार गुस्से से बात करने का है। और आप सब डिवाइन आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, तभी तो आप एक अच्छे प्रोग्राम में यहाँ इकट्ठी हुई हैं। इस शहर में हजारों लाखों लोग रहते हैं, सब तो महान नहीं है, आप ही क्यों यहाँ आए? क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता, वो महानता छिपी हुई है। आप अच्छाई को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। तो आपका संस्कार कैसा है? प्यार से बात करने का। सामने वाले का कैसा था? गुस्से से बात करने का। उसने गुस्सा किया और आपने फिर क्या किया? पहले तो प्यार से बात की, क्योंकि आपका संस्कार है, लेकिन उसने और गुस्सा किया। अगर उसके गुस्से को देख के आपने अपने प्यार के संस्कार को भुला दिया और आप भी गुस्से में आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? पावरफुल वो था या आप थे? ज्यादा ताकत गुस्से वाले में थी या आपके अंदर थी? उसके संस्कार से आप प्रभावित हो गए, आपने अपना असली संस्कार प्यार से बात करने वाला भुला दिया और उसके संस्कार को कॉपी करके, उसकी नकल करके आपने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। अगर आप ताकतवर होते तो उसकी निशानी होती कि वो जितना गुस्से से बोले आप उतना ही प्यार से बोलते, आप उतना ही प्यार से बोलते, तो क्या रिजल्ट आता? कि वो धीरे धीरे ऊपर आपसे इंप्रेस होता और वो भी प्यार से बोलने लग जाता। अगर ऐसा होता तब आप ताकतवर होते, अगर आपने उसकी नकल कर ली तो आप तो कमजोर हो गए। अब अपने आप को क्या बनाना है? ताकतवर बनाना है। दूसरे को अपने व्यवहार से, अपनी मिठास से, अपने प्यार से बदलना है। गुस्से को जीतने के इतने फायदे हैं ना, आधी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आपने गुस्सा जीत लिया। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बीपी, हार्ट अटैक, कितनी बीमारियां, कितने नुकसान इसके कारण हो रहे हैं, किसी डॉक्टर से पूछना। एक टेंशन, एक गुस्सा, आधी बीमारियां इन्हीं से पैदा हो रही हैं। एक बार एक राजा था, राजा का बाहर सर्दियों के दिनों में दरबार लगा हुआ था। सारे मंत्री, सारे एडवाइजर, सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे, परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, जामपना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। महाराज ने आज्ञा दी, कहो बताइए क्या बात है? कहते हैं, महाराज मेरे पास इस थैले में दो चीजें हैं, एक हीरा है, एक कांच है। आपके दरबार में अगर कोई है बहादुर पुरुष जो पहचान ले इसको कि कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है, तो मैं उसे पूरा हीरा उसको दे दूंगा। आज तक महाराज मैं कई राज्यों में गया हूं, किसी ने इसको पहचाना नहीं है, इसलिए आप में अगर कोई है तो पहचान को देख लो, लेकिन मेरी शर्त यह है अगर कोई नहीं पहचान सका तो जितनी कीमत इस हीरे की है उतनी कीमत आपका, उतनी कीमत का पैसा आपको मुझे अपने राजकोष से देना पड़ेगा। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा, सबने सिर झुका दिए, किसी में हिम्मत नहीं पड़ी परखने की। राजा ने अपनी ओर तो थाई, सब हार गए। इतने में एक अंधा व्यक्ति वहां प्रवेश करता है और कहता है, महाराज मेरी आंखें नहीं हैं और मुझे पता चला है कि कोई भी पहचान नहीं पाया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं परख के बताऊंगा। राजा ने सोचा, भाई ये तो इज्जत का सवाल है, बेइज्जती होगी, किसने भी नहीं पहचाना, चलो इस अंधे को चांस दे देते हैं। अंधे व्यक्ति ने कहा, महाराज दोनों चीजें मेरे हाथ में दीजिए। उसने दोनों चीजें, कांच भी हाथ में लिया और हीरा भी हाथ में लिया, और एक मिनट में उनको हाथ में पकड़ने के बाद कह दिया, महाराज ये हीरा है और ये कांच है। उस व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, इसने सही परखा है। राजा ने उससे पूछा, भाई तू तो अंधा था, तुझे कैसे पता चला? वो कहता, महाराज इसमें आंखों की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। कहते, कैसे? कहते, जो हीरा था ना वो धूप में गर्म नहीं हुआ, और जो कांच था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। तो जो गर्म था वो कांच था, जो ठंडा रहा वो क्या था?
खीरा था। अब बताओ जो गर्म होता है किसने रोक दिया है? जो गुस्से में गर्म हो जाए वो कांच हुआ या हीरा?
कांच। देखो छोटा बच्चा भी कह रहा है क्योंकि इसको भी गुस्सा करना पसंद नहीं है। जब बच्चे को गुस्से में डांटते हैं ना माँ बाप, बच्चे को बहुत बुरा लगता है। गुस्सा करना ही नहीं है आपने। अब आपने क्या बनना है? हीरा बनना है। सब प्यार से काम चलाना है। कहीं आग लगी हो तो आग को ठंडे पानी से बुझाया जाता है कि आग के ऊपर और आग डाली जाती है? ठंडे पानी से। कोई व्यक्ति गुस्से में आग की तरह जल रहा है और आप भी जलने लगे तो क्या होगा? आग बुझेगी या कुछ होएगा? और बढ़ेगी। तो अब आपने दूसरा गुस्सा करे, आपने ठंडे पानी के छिड़काव उस पर करना है। दैट मतलब आपने प्यार से ही बात करनी है, आपने डिस्टर्ब नहीं होना है। जो गुस्सा करे समझो वो व्यक्ति दुखी है, दर्द में है, ठीक है। अब लास्ट में एक गीत और बजेगा जो हमें सिखाएगा कि इस जीवन में प्यार से रहना है। मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, राजयोग मेडिटेशन का। कैसे उस परमात्मा को याद किया जाता है, परमात्मा को कब याद करना होता है? आप लोग हर रोज परमात्मा को याद करते हो या जरूरत पड़ने पे याद करते हो? हर रोज याद करते हो या कभी कभी करते हो? जब कोई समस्या आए तब याद करते हो या समस्या के समाधान के टाइम याद करते हो? संडे के दिन याद करते हो या मंडे के दिन? पेपर वाले दिन याद करते हो या जिस दिन रिजल्ट आना हो? बच्चे कब याद करते हैं? अच्छा, भगवान को क्यों याद किया जाता है, क्यों याद करना चाहिए? भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि भगवान को याद करेंगे तो भगवान की तरह बनेंगे। भगवान की तरह अच्छे आदमी को याद करेंगे तो अच्छा बनेंगे, खराब को याद करेंगे तो खराब बनेंगे। तो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम कौन है? वो परमात्मा। इसलिए उसे याद करने की जो विधि है उसे मेडिटेशन कहते हैं। वो हमारा मन ही मन उससे वार्तालाप करने की एक विधि है, उसे अपने दिल का नाता जोड़ने की विधि है। तो अभी सभी अपने अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल कमर सीधी करके, चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं, कोई हलचल नहीं, और बिल्कुल शांत होकर सोचें अपने आप को इस जगत की हलचल से दूर एकदम शांत स्थान पर ले चलें, दूर पहाड़ियों के बीच, जहाँ पहाड़ियों के मध्य से एक झरना निकल कर आ रहा है। सुबह का समय है, बहुत ही शांति वातावरण में है। उगते हुए सूरज को देखें, नाचते हुए मोर को देखें, पंछियों की संगीत में आवाज को सुनने का प्रयास करें, एकदम शांत वातावरण, और ऐसे वातावरण में अपने आप से बातचीत करें, अपने आप से पूछें कि मुझे अगर खुश रहना है तो क्या करना होगा। अपने को विचार दें कि मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ, स्वयं खुशियों का सागर परमात्मा मेरे ऊपर खुशियों की बरसात कर रहा है, मेरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। आज से मैं ये संकल्प करता हूं कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी को जाने नहीं देना है। खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और खुशी का रचयिता मैं खुद हूँ। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दे दिया कि आज से तुम सदा खुश रहोगे, खुश नसीब भव का वरदान स्वयं भगवान मुझे दे रहे हैं। समझा दें अपने आप को कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, प्यार से संसार में रहूंगा और प्यार से ही बातचीत करूंगा। इस दुनिया को मैंने प्यार से भर देना है, सच को परमात्मा का प्यार देना है। ये दुनिया प्यार की दुनिया बनानी है। समझा दें अपने आप को, आज से मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, आज से मेरे खुशियों भरे दिन शुरू हो चुके हैं। स्वयं भगवान मेरे लिए खुशी का उपहार लेकर आया है। भगवान का धन्यवाद कर दे, हे परमपिता परमात्मा, तुमने मुझे खुशी इसके खजाने से भरपूर कर दिया है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
और विशेष हमारे हमारे उपकार भाई हमारे मध्य पहुंचे हैं, उनका विशेष करवाना आगमन पर आदमी का समय बन जाए। स्वागत है, स्वागत। खुशी के इतने व्यक्त आप सबको हमारे उपकार भाई ने दी है। देखो फोन करेगा, बोलिए तो आपको मिल गई, गोली तो मिल गई ना सबको। ये गोलियां पत्ते नहीं बन रहे थी या इसको पाओगे नहीं, पाओगे या पत्ते नहीं बन रखोगे। हाँ बात तो बहुत अच्छी बताई थी, जिसके पीछे ती लगा दी मैंने पत्ता खोल लाई। बातें तो बहुत अच्छी है, ये भी समझो पत्ते नहीं, पत्ते को खोलना मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उसके लिए करना भी चाहते हो आप, ये नहीं कि आप नहीं करना चाहते हो।
आपको विचार अच्छे लगे, बातें बड़ी अच्छी लगे, मन के अंदर उमंग भी आए कि नहीं वास्तव में ये वास्तविकता है जो हमारे उपकार भाई ने आप सबको बताया। बस ताकत नहीं, करने की हिम्मत नहीं है या करने की क्षमता नहीं, तो उसके लिए जिन्होंने आखिरी सिर्फ आपको दिया, गोलियां भी देते हैं डॉक्टर, सिर्फ भी देता है भाई, ये भी थोड़ी थोड़े पीते रहोगे तो ये पूरी बीमारी बनते ठीक हो गए, या सिर्फ ये कहकर ये तो सारी गोलियां ठीक करने की है, ताकि ये जो सिर्फ है ना टॉनिक, ये ताकत का, तो लास्ट वाला जो सिर्फ माना मेडिटेशन, ये इन सब बातों को ताकत दे सकता है। वैसे ताकत आएगी क्योंकि जब तक जीवन में शांति नहीं होगी, ये जितनी भी बातें हमारे उतार भाई ने बताई, इस आप सबका संबंध हमारे पहली इस बात से, जितनी आप में शांति होगी उतनी आप में सहन शक्ति होगी, जब सहन शक्ति होगी तो ये सारी बातें सहज जीवन में कारगर हो सकती, जीवन में सहज इनको अपनाया जा सकता। शांति नहीं है तो सहन शक्ति नहीं है। इतने मिसाल थी खुश रहने के, और आप सबको भी पता है खुश रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरे को देखना नहीं चाहिए, वो तो सब अपनी किस्मत लिखो आगे आए, उसको दिया भगवान ने उसकी किस्मत के हिसाब से दिया है, मुझे दिया मुझे मेरी किस्मत के हिसाब से दिया, वो तब कारगर होगी जब आपके अंदर सहन सहन शक्ति बहुत सबसे बड़ी दवाई है मनुष्य जीवन में। आज सहन शक्ति ना होने के कारण ये सारी बातें कभी पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, इस सब की जड़ ये अशांति है, अशांति से ही ये ईर्ष्या सब कुछ पैदा होती है। तो शांति जीवन में कहनी चाहिए, और शांति के लिए क्योंकि मन हमारा बहुत समय से अशांत करता है, अब उसको अशांत को प्लस्तर इसमें बहुत समय से बंधा हुआ है शांति का, प्लस्तर तो इसने भाई साहब ने खोल दिया अहंकार भाई, प्लस्तर तो खुल गया, अब इसका मतलब प्लस्तर खुल गया तो हाथ ठीक हो गया आपका, क्या करना पड़ेगा, कहेंगे ये हाथ तो प्लस्तर तो खुल गया, चलो हल्का तो हो गया पर ये मुड़ता तो नहीं है, मुड़ेगा कैसे, एकदम मोड़ दोगे उस दिन, तो उसके लिए क्या करोगे, क्या डॉक्टर क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज धीरे धीरे, क्या कहेगा, चलते फिरते भी अभ्यास एक्सरसाइज करेंगे तब जाके दो तीन महीने के अंदर आप अपनी पोजिशन, तो अभी तो आपका प्लस्तर आज खुल गया, अब इसकी एक्सरसाइज कौन करेगा, अहंकार भाई कर लेगा, वो तो है पावर है उसके पास, तो शक्ति है हमारे पास तो शक्ति नहीं, भाई जी आपने इतना कुछ करके दिया, ये भी करके दे देते साथ तो कितना मजा आता है, पर ये करेंगे तो मजा इनको आएगा आपको आएगा, तो अब आपको जो ये बातें आपको हमारे अहंकार भाई ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं इनको प्रैक्टिकल में लाना, तो इनकी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो ब्रह्मा कुमारी में नारियों के द्वारा ये सब बातें सिखाई जाती है, मैं कौन आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो शांति में टिकने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब ये एक्सरसाइज जीवन में हम करेंगे तो आप गारंटी से, जैसे डॉक्टर गारंटी लेता है ना इलाज की, तो वो सुप्रीम सर्जन, वो परम पिता परमात्मा शिव जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, वो गारंटी लेता है कि बच्चे को मेरी ये दवाई कर, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ मेरे जीवन में सदा खुशी रहेगी, तेरे जीवन में सदा, पंजाबी में कहते हैं ना, खुशियां खेते साथे मेले, आपके घर आंगन में सदा खुशी रहेगी, सदा शांति। तो मैं यही आशा आप सबसे रखता हूं कि आप अवश्य किस समय की चीजें जरूरत आप सबको पता है, बहुत भाई बहनों को बहुत बार पता है, क्रोध आता है। क्रोध क्या करता है? पहले तो हम खुद गहरे हो जाते हैं क्रोध से, क्रोध आएगा, क्रोध में विचार आएंगे तो हम खुद गहरे हो जाते होते हैं ना। सही, जब हम शांति से प्यार की बात करते हो तो मुझे मारने करते, कैसे करते हो? प्यार की बात करनी हो तो बहुत धीरे धीरे, और उसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाए तो फिर क्या करते हो? रुक के बात, जैसे उसको सुनना नहीं, प्यार की बात कर रहे हैं तो उसको स्लो भी सुनना, धीरे से भी सुनना। इसका मतलब पहले तो मैं, मेरे अंदर जोश आया, मैं खुद गहरा हो गया, तो मैंने सोचा ये भी गहरा, इसलिए रुके बात के अपनी बात पे उसको करता हूं उसके साथ जोर जोर से। माना लड़ते कैसे हैं? जोर जोर से। और जब गुस्सा व्यक्ति के अंदर आता है, आप लोगों को सबको बताया हुआ कि एक बार क्रोध करने से हमारा जो खून है शरीर का 72 घंटे तक वो अंचल पे रहता, अंचल पे रहता। और इसलिए आप देखोगे जो ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, जिनको बीपी है उनसे पूछो, उनमें से 60-70% उनको गुस्सा जल्दी आता, उनको बीपी की प्रॉब्लम। इसके बीपी कितना सुंदर सुना हमने, जिंदगी में प्यार से चलना सीख, प्यार से तब चल सकते हैं जब दूसरे के भी यथार्थ पहचानो और अपने भी यथार्थ पहचानो। उस पहचान के साथ हम चलते हैं कि ये आत्मा, ये भी कुछ पिता परमात्मा का बच्चा, मेरा भाई और मैं आत्मा भी परमात्मा के संतान, हम भाई। जब ये दृष्टिकोण हमारा बनता है, इस तरह की स्थिति विचार में जब आती है तो जीवन में शांति भी आती है, तो शांति के साथ चैन। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको इतनी अच्छी ये डोज, अध्यापक डोज पूरा हमारे निर्वाणा के भाई बहन समय प्रति समय कोई ना कोई कार्यक्रम करके ये आप सबको उपलब्ध कराते हैं। आपको इन सब का भी कितना आभारी होना चाहिए, कितना इनका धन्यवाद प्रोग्राम को। विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी सबसे ज्यादा समाज के अंदर खुशियों की बहुत कमी है। एक भाई हमारे पास आता है, 3 घर में 4 बच्चे, 2 बच्चे हैं और 2 मियां बीबी, 4 घर हो गए। तो वो कहता आपको जब चलता हूं मैं घर, खाना खा के कोई बात नहीं जीतनी, वो तीनों अपने मोबाइल देख के वो मुस्कुराने में, वो मुस्कुराने में, वो ऐसी शांति नहीं चाहिए। तो ऐसी शांति को नुकसान कर, मतलब बात आपस में एक परिवार के सदस्य भी बात करना बन गए। तो इसलिए ऐसा प्रोग्राम इन्होंने खुशी में रहने के लिए आप सबके लिए रखा, तो बहुत बहुत सबका, इन सब भाई भाइयों का, बहनों पहले तो भी के चाहिए जिनको प्रेरणा मिलती है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य राधा जी ओंकार जी, क्योंकि कुछ एक नाम थे माउंट हाउस में यहां पर आपके बीच में पधारे हैं और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कहूंगा, कोई भी सभा कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और आज का जो विषय था खुशियों का उपहार, और उपहार तो कोई भी हो अच्छा ही होता है, और आज उपहार के रूप में आदरणीय माता जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, उसमें से तो मुझे लगा तो उन्होंने बताया कि आंखों को अपनी सोच जो है वो खोलती नहीं है। अगर अपनी सोच को हम अच्छा रखेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, तो निस्संदेह उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा। और मेरी सोच जो मीडिया है उसकी मेरी टाइमलाइन भी मैंने लिखी हुई है, थिंक पॉजिटिव इट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर हम अच्छा सोचेंगे इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे भ्रातक ने कहा हमें अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। जहां तक हमें चिंता रहती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, आज के बारे में हम नहीं सोचते हैं कि हम आज में क्या हम करें। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े साहूकार थे, बहुत सारा धंधा होते थे। वो अपने मुनीम को बुलाकर कहते हैं कि मुनीम जी इधर आओ और बताओ कि हमारे पास कितना धन। मुनीम जी आए और बोले कि आपकी जो है बस पुश्ते बैठ कर आ सकती है कितना धन आप। दस पुश्ते बेटे, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, तो वो जो साहूकार थे जोर जोर से होने लगे। तो जब मुनीम ने तो कहने के एक साथ क्या हुआ हम रोक रहे, तो कहने लगे कि मेरी स्वस्थ पुस्तक मेरी तो पैसा है लेकिन मेरी ज्ञान पुस्तक क्या हुआ। वो जो मुनीम भी थे कहने लगे मुझे आपका रोना नहीं देखा जाता, चलो हम चलते हैं काम फोन करके आते। तो गए वो किसी महात्मा के पास, महात्मा का दरवाजा लटकाया। जो तो महात्मा जी थे वो ग्रस्ती थे, उन्होंने लटकाया तो बाहर आए महात्मा जी। बोले तो वो साहूकार कहने लगा महात्मा जी मैंने कुछ दान पुण्य करना है आपके लिए, कुछ चावल, कुछ आटा, कुछ और सामग्री सब्जी, वो मैंने आपको दान करना। तो महात्मा जी कहने लगे एक मिनट रुक जा। उन्होंने अपने घर पत्नी को पुकारा, बोला भगवान बाहर एक पेट आए हैं और कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, बताइए क्या करें। तो उनकी पत्नी ने कहा एक मिनट रुक, मैं तेरे अंदर देखता हूं कि क्या आज हमारे लिए खाना है। तो उसने देखा और अपने पति को बताया कि आज के लिए हमारे पास भोजन भी है, आटा भी है, चावल भी है, सब्जी भी है। तो उन सेठ जी को कहो कि आज हमारे लिए सब कुछ है, ये तो दान को नाम में करना है, किसी और को जाके करना। तो वो जो महात्मा जी आए बाहर सेठ साहब से बोले सेठ साहब हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए खाना भी है, हमारी चावल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब कुछ है। आप किसी लोगों को आपको जिसकी जरूरत है उसको ये दान होगा। तो वो जो शेर था उसको ज्ञान आ गया, कह लगा अरे देव को हम सारा पुरुषों की चिंता कर रहे हैं तो इस महात्मा को केवल आज की। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें आज की चिंता इस समय चिंता का प्रोग्राम हमें करना है, लेकिन ये चिंता ये नहीं करनी कि हमारा उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर। हमें इतना ही जरूर कहूंगा कि जो हमारे भ्राता जी नाम को चिंता नहीं पाते और जो हमारे पहले हफ्ता से टैबलेट, तो अब यह आपके ऊपर है 50 से 60 मिनट टैबलेट आप खाना चाहते हैं क्या भ्राता जी की
धन्यवाद।
पानी उन्होंने तलवारा के अंदर आके इतने कीमती समय में हमारा मार्गदर्शन किया। आज के युग में अंधकार के युग में प्रकाश के फिल्म दिखाने वाली कोई संस्था है तो वो ब्रह्मा कुमारी है। मन की मरम्मत करने वाली अगर कोई संस्था है जिससे आत्मा का ज्ञान होता है वो ब्रह्मा कुमारी है। मैं हत्या की गहराइयों से प्रोफेसर उपाध्य का है सीमा जी का और दरवाने के सभी माननीय माताओं बहनों बुजुर्गों का धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ बड़ा कीमती समय दिया। और मैं निवेदन भी करूंगा कि समय समय पर समाज को के साथ मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे ही कार्य सभाएं आयोजित हो जाए जिससे समाज में रोजगार में मजबूती आए और एक नया रास्ता दिखे।
अभी हमारे बीच कुमारी उमंग जी एक सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है। गीत के बोल है उमंगों के पंख लगाते चलो उड़ते चलो उड़ाते चलो। कुमारी उर्वशी अभी नृत्य लेकर के आ रही है। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम खुशियों का सागर खुशियों का उपहार लेके आए हमारे लिए उन सब उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच पर आते हमारे मुख्य अतिथि एलआईसी मैनेजर जिसको रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी धर्म पत्नी मंडी के प्रधान जी उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। पूरा समय उन्होंने प्रोग्राम में दिया शोभा बढ़ाई और हमारी खुशियों को बढ़ा दिया। और खाताओंकार भाई जी से तो विशेष इतनी दूर से हमारे बीच में आए हैं माउंट आबू से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खाता जी ने भी कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो बार बार होने चाहिए क्योंकि खुशी की आज सभी को जरूरत। हम तो इतनी बात सुनी कि विदेशों में खुश रहने की गोलियां नहीं लगाई नींद की गोलियां तो सभी थी लेकिन खुश रहने की गोली वंडरफुल बात। खुश रहने के लोग त्रिंगम से होते हैं वो नशे की चीजें होती हैं वो पूछते रहते हैं और वो नशा चलता है कितने देखो तरीके अपनाते हैं खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए जोर लगाना पड़ता है जैसे पार्क में जोर लगाते हैं बहुत जोर से ऐसे करो वॉक करो फिर तो बड़ा अजीब सा लगा ये क्या कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा बताया ना खुशियों का सागर खुशियों का भंडार अपने सदा खुश रहने की कला सिखा सदा काल की तेरे फूलों से भी प्यार तेरे से भी प्यार हर हाल में हमें कुछ रहने के लिए कंडीशन नहीं रखनी है। कई उन्होंने कंडीशन लगाई हुई मेरा मोटा हो जाए फिर खुश हो बेटे की नौकरी लग जाए फिर खुश हो प्रमोशन हो जाए फिर खुश हो खुशी बाहर ही खड़ी आती नहीं अंदर लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना आज प्रतिज्ञा करते जाओ कुछ भी हो जाए तो परमात्मा कहते हैं हर परिस्थिति में प्राण चले जाए लगे खुशी नहीं खुशी को बड़ी दवाई है खुराक है खजाना है और आप खाता रहता है ना तो ट्राई को खाते हैं आप खुशी की खुराक खाएंगे तो और किसी खुराक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दुखी दुखी खा के भी स्वस्थ रहेंगे आप, कितना कुछ खाते रहते हैं लोग फिर भी बीमार रहते हैं, क्यों खुशी की खुराक नहीं खाते। खुशी की खुराक कौन देता है? परमात्मा ही देता है। आज हाथों से जुड़ जाएंगे ना डेली देखिए खुराक खाना डेली आध्यात्मिक ज्ञान जो यहाँ दिया जाता है हमारी संस्था जिनको कोर्स कराया जाता है डेली हमारी रेगुलर क्लास होती है ईश्वरीय क्लास उससे जो है हमारी नेचुरल खुशी बनी रहे नेचुरल खुश रहते हैं हम अंदर कुछ रहने के तरीके भी अपनाए रहते हमारे हिसाब में बहुत अच्छी बात बताई कि सोच हमारी अच्छी हो तो हम सदा खुश रहें पॉजिटिव सोच हो हर कोई कहता है पॉजिटिव सोच लेकिन सदा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें सकारात्मक रहें उसकी कला आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही एडुकेशन के द्वारा तो आप टेक्निक सीख जाएंगे ना साथ इन स्पोर्ट्स में घर में रहते हुए आप हर परिस्थिति में सदा खुश रह सकते इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।